और फिर एक फल ले लो अपने हाथ में, छोटा बड़ा कोई भी फल, और उसमें देखो आप, नारियल के पानी में पोटेशियम होता है और भी कुछ तत्व होते हैं, उन तत्वों को हटा करके देखो, सिर्फ H2O को देखो, तो अब वो नारियल का पानी नहीं है, वो H2O है। फिर नदी के पानी को लेकर के देखो, नदी को हटा दो दृष्टि से, अब क्या दिख रहा है, H2O। समुद्र के पानी को ले लो, खारा है, खारेपन को हटा करके देखो, H2O। और भी जो उसमें मिनरल्स है उन सबको हटा करके देखो, H2O। मिर्च के अंदर जो पानी है, क्या उसमें कैप्सिकम वगैरह जो केमिकल्स है जिससे तीखा स्वाद आता है ना, गुजराती में तीखा बोलते हैं उसको और हिंदी में चिरपिरा बोलते हैं, तो उसको हटा करके देखो आप, तो उसमें जो जलांश है वो क्या है, H2O। नाशपत्ती वाले देख लो, पियर्स में देख लो, अमरूद में देख लो, किसी भी चीज में देखो, अगर सिर्फ आप H2O को देख रहे हैं तो बाकी सब निरपेक्ष हो जाते हैं और सिर्फ पानी दिखता है। बस इसी प्रकार ये जो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है वो इसी समय आपके अंदर सिद्ध भगवान के दर्शन कराता है। आ रहा समझ में? इसी वक्त आप कर्मों को हटा दो, कर्मों को हटाओगे तो नौकर्म कहां से रहेगा, आ रहा समझ में? जैसे उसमें फलों में आपने सब सिर्फ पानी देखने की कोशिश है, दूध में भी देख लो ना आप, दूध में भी देख सकते हैं आप, सिर्फ पानी देखो आप दूध में तो H2O ही रहेगा, वो उसमें कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं बन सकता। फिर वो ग्लूकोज वगैरह सारी चीजें गौण हो जाएगी, लैक्टोज वगैरह गौण हो जाएंगी, शुगर वगैरह गौण हो जाएंगी, ये जितने सब फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूलाज जो है ना, उसके फॉर्मूले ही बोलना चाहिए बहुवचन में, फॉर्मूलाज, ये रॉन्ग इंग्लिश, फॉर्मूला एक वचन है, बहुवचन में फॉर्मूले ऐसा होता है उसमें व्याकरण के हिसाब से। तो उसमें आप देखेंगे C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है। तो ये सारी चीजें हटा करके देखो आप, तो क्या दिख रहा है उसमें, H2O, सिर्फ पानी मात्र है। उसी प्रकार आप सब कर्म नो कर्मों को हटा करके देखो, अभी क्या है, अपन सिद्ध सदृक शुद्धात्मा, ये दृष्टांत दिया है, सिद्ध भगवान के समान शुद्धात्मा है। अब और देखिए आगे दृष्टि, ये दृष्टांत हमने इसलिए दिया, यहां तो आचार्य महाराज ने सिद्ध भगवान का दृष्टांत दिया, तो ये हमने पानी का दृष्टांत इसलिए दे दिया कि आप लोग जिससे ज्यादा निकट है वो दृष्टांत जल्दी समझ में आ जाएगा, तो उससे बात स्पष्ट हो जाए। फिर दूसरा देखिए, उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक, ये इसका नाम आप ऐसा लिखना, सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने, उत्पाद व्यय को गौण करने वाला, यथा द्रव्यम नित्यम, जैसे द्रव्य नित्य है, सत्ता को ग्रहण कर रहा है वो, निगोद से लेकर सिद्ध पर्याय तक एक जीवात्मा है, शाश्वत अविनाशी ध्रुव नित्य। ये सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। फिर तीसरा, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक है, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक है, यथा जैसे निजगुण पर्याय स्वभावत्वात् द्रव्यम अभिन्नम, अपने गुण और पर्यायों वाला होने से, अपने गुण और पर्याय स्वभाव वाला होने से द्रव्य अभिन्न है, अभिन्न यानी गुण पर्यायों से अभिन्न है। और उसका उदाहरण तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये कौन से नय का कथन है, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। इतना अगर आप लोग पढ़ करके होशियार बन जाओ तो फिर तो बिल्कुल, जब तीन कैटेगरीज बनाई ना स्वाध्याय की, एक प्राथमिक वर्ग होता है, दूसरा मध्यम वर्ग होता है, और तीसरा ज्येष्ठ वर्ग। ये सारी बातें जो है ज्येष्ठ वर्ग वालों वाली, बल्कि उसके भी बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं ना, उनके हिसाब की बातें हैं, बहुत सुंदर बातें हैं। ठीक है, वो तो मिल जाता है, भाग्य होता है जिसका, उसको अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। क्षयोपशम तो निरंतर है अपना, अंतराय कर्म का जो होता है वो मतलब अनादि काल से क्षयोपशम ही रहता है उसका हमेशा। उदय रहता है तो उसकी देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है, नियम है। तो इसलिए पांच लब्धियां तो शाश्वत हमेशा बनी रहती है। क्षयोपशमिक लब्धियां निगोद से लेकर अंतिम मनुष्य पर्याय तक रहेगी, और जैसे ही क्षयिक भाव में पहुंच जाएंगे तो वो क्षयिक लब्धि रूप हो जाएंगे। और फिर उनका फल क्या होता है, तो साता के उदय में इष्ट की प्राप्ति और असाता के उदय में अनिष्ट की प्राप्ति, बस इतना ही काम होता है उसका। और प्राप्ति तो लाभांतराय के क्षयोपशम या क्षय से है, और भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, और एक बीच में और कौन सा था, दानांतराय, सबसे शुरू में था वो। तो ये ऐसी स्थितियां बन जाती है। तो ये ऐसा समझ लो आप कि साता का उदय और साथ में लाभांतराय का क्षयोपशम, उससे ये चीज आपको मिल रही है। वेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का उदाहरण हो गया गुण पर्यायवत द्रव्यम। अब इसके आगे देखिए, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है। यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा, क्रोध आदि कर्म जनित भावों वाला आत्मा है। द्रव्यार्थिक नहीं का कथन है क्या, क्योंकि द्रव्य की बात है यहां पर, आत्मा की बात चल रही है, पर्यायों की चर्चा नहीं हो रही है। क्रोधाधिक कर्म जनित भावों वाला कौन है, आत्मा। तो आत्मा को पकड़ रहा है वो, लेकिन कैसी आत्मा को पकड़ रहा है, क्रोधी, मानी, मायावी अथवा लोभी, ऐसी कर्म जनित भावों से युक्त आत्मा को पकड़ने वाला जो द्रव्यार्थिक न है वो कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न है। अब इसके बाद पांचवा द्रव्यार्थिक कौन सा है, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, उत्पाद और व्यय को सापेक्ष करने वाला अशुद्ध द्रव्यार्थिक न है। यथा एकस्मिन समय, नाम लिख लिया, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक। यथा एकस्मिन समय, वो आगे का मत रखना भरोसा है ना, घर जाकर के देख लेंगे ऐसा नहीं, यही लिख लो तुरंत, क्योंकि टालने का मतलब अरुचि। टालने का एकमात्र कारण क्या होता है इसलिए पूरी लगन के साथ इसी समय लिख लो। उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न। यथा एकस्मिन समय द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम, जैसे एक ही समय में द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, ये जो दोनों सूत्र हैं ये सूत्र इस नए की विवक्षा से बनेंगे। उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, देखो अशुद्ध शब्द लगा उसमें, इसके आगे छठा भेद है। भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है, भेद कल्पना को सापेक्ष करने वाला अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। ये सब शब्द सुनकर के कुछ लोगों को थोड़ा सा भारी लग रहा होगा ऐसा हमें महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी विनयेन सुदमधीदम जैवि पमायण होई विस्सरिदम तमुवट्ठादि पर भवे केवल नाणम च आवहदि। मूलाचार में गाथा आती है कि विनय से आप सुन भर लो, और वो आप भूल भी जाएंगे, ये भी बात है। ऐसा भी उसमें आता है गाथा में कि जय प्रमाण हुई विस्तृतम, प्रमादवश वो भूल भी जाते हैं तो भूलने पर भी तम वट्ठादि पर भवे, चूंकि आपने विनय के साथ इसको सुना है, पढ़ा है, तो वो अगले जन्म में आपको बिना सिखाया जाएगा। अगले जन्म में बिना सिखाए आप ये चीजें प्राप्त कर लेंगे। और केवल नाणम चावद, और वो जो ज्ञान है जो आज आप विनय से सीख रहे हैं, वो आपको केवल ज्ञान तक पहुंचा देगा। कितनी बड़ी बात है, विनय की क्या अपार महिमा है। और इसको भक्ति को, विनय श्रुति ज्ञान की भक्ति को मोक्ष का निकट कारण बदला है। चार कारण बदला है सिद्धांत में। धवला की पहली पुस्तक में एक पंक्ति आती है जो इसमें भी दी हुई है, समय सार सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार में आचार्य जयसेन स्वामी ने भी टीका में उद्धृत किए वो तथा चोक्तम सिद्धांते। सिद्धांत में कहा कि चार बात जिसके पास हो, इन चार कारणों से संसार से बहुत जल्दी पार लग जाता है जीव। कौन सी चार बातें? एक है द्वादशांग अवगम, 12 अंगों का पूर्ण ज्ञान हो, वो जीव वापस मिथ्यात्व में नहीं जाता। श्रुत केवली मुनि जो होते हैं वो नियम से निकट भव्य होते हैं, बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब मोक्ष जाने का एक शर्त जरूर है कि जिस काल में केवली होते हों उसी काल में मुक्ति होती है, जिस काल में केवली नहीं हो सकते उस काल में मुक्ति का निषेध है। और फिर उस काल में क्षायिक सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। एक गाथा आती है ना, आपको बताई थी पहले, पढ़मे पढ़मम नियदम, पहली बार सम्यक दर्शन होगा तो पहला वाला ही होगा प्रथम ऑप्शन, और विधियम सम्मम पुण सब्व कालम में, दूसरा जो सम्यक दर्शन है कौन सा, वेदक अथवा उसका दूसरा नाम क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन सब्व कालम में, सभी कालों में हो सकता है। और खाइय सम्मतम पुण केवली जिना जम्मी कालम में, क्षायिक सम्यक दर्शन तो उसी काल में होता है, जम्मी कालम में केवली जिना, जिस काल में केवली जिनेन्द्र होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के जीव को जब वो यहाँ आएंगे, जैन मत के अनुसार वो आगामी 24 में 16वें तीर्थंकर निर्मलनाथ भगवान बनने वाले हैं। निर्मलनाथ भगवान आगामी जो 24 तीर्थंकर होंगे ना, पहले महापद में है, 16वें निर्मलनाथ भगवान है, और निर्मलनाथ भगवान श्री कृष्ण बनने वाले हैं। तो उस समय उनके पास क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है। धवला की 6 पुस्तक में ये उल्लेख है कि उनके पास क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है, और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ ही वो यहाँ पर गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक को प्राप्त करेंगे। और ज्ञान कल्याणक जो होता है वो क्षायिक सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं है। तो 3 कल्याणक उनके क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ होंगे। और उसके आगे क्षायिक सम्यक दर्शन कहाँ प्राप्त होगा उनको, क्योंकि तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो किसी गुरु से नहीं लेते। नमः सिद्धेभ्यः, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके त्रिसाक्षी पूर्वक, देवों की साक्षी, आत्मा की साक्षी और सिद्ध भगवंतों की साक्षी में उनकी दीक्षा होती है। बाकी सबको वो दूर छोड़ देते हैं, जंगल के अंदर जाते हैं, जिस शिलापट पर दीक्षा लेते हैं इंद्राणी रत्नों का चूर्ण बनना से साथिया बना देती है, रत्नों के चूर्ण से, और वहाँ पर उस शिला पर बैठ करके जब वो दीक्षा लेते हैं अपने दीक्षा वृक्ष के नीचे, तो त्रिसाक्षी का दीक्षा तीर्थकराणाम भवती, 3 तीर्थंकरों की दीक्षा जो होती है वो 3 के सामने होती है, सिद्ध भगवान के सामने, देवों के सामने और खुद अपनी आत्मा के सामने त्रिसाक्षी दीक्षा होती है। तो वहाँ दीक्षा जब लेते हैं तब वो उसी समय श्रुत केवली बन जाते हैं खुद, और उनको फिर दूसरे किसी श्रुत केवली या केवली के सानिध्य में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए नहीं जाना पड़ता, और खुद उनको क्षायिक सम्यक दर्शन, ऐसा खुलासा किया जबला की 6 पुस्तक में। सम्यक तोत्पत्ति चूलिका नाम का एक प्रकरण है, उसमें बहुत सुंदर प्रकरण है, 8वां प्रकरण, उसमें ये बात आई है कि इस प्रकार से उनकी स्थिति। और बाकी सब जीवों को, कितना भी बड़ा कितना भी महापुरुष क्यों ना हो, केवली और श्रुत केवली के चरणों में जाना ही पड़ेगा क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। और केवल एक तीर्थंकर भगवान ऐसे होते हैं जिनको कहीं नहीं जाना पड़ता। हाँ, अगर कोई अन्य श्रुत केवली हैं और उस काल में कहीं केवली श्रुत केवली का समागम है आसपास, इस काल के जो श्रुत केवली थे पंचम काल के 5, कौन से श्रुत केवली थे? आचार्य विष्णु, आचार्य नंदी मित्र, फिर आचार्य अपराजित, आचार्य गोवर्धन स्वामी और आचार्य भद्रबाहु स्वामी, ऐसे पंचश्रुत केवली जो थे। क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और हुआ तो ठीक है, उसका तो समाधान ही अपने पास है। अगर हो जाता है तो फिर खुद श्रुत केवली हो तो उनको हो सकता है क्षायिक सम्यक दर्शन, लेकिन क्यों नहीं हुआ? तो फिर वो जो गाथा अभी अपन ने पढ़ी थी ना, खाई सम्मतम पुण केवली जिना जम्मी कालम में, जिस काल में केवली जिनेन्द्र होते हैं उसी काल में क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। इसलिए इस काल में थे नहीं पंचम काल में केवली भगवान, तो उनको पांचों श्रुत केवलियों को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो निकट भव्य है, अगले मनुष्य पर्याय में मोक्षगामी है। श्रुत केवली महाराज बहुत जल्दी मोक्ष जाते हैं। एक कारण यह हो गया मुक्ति का, जल्दी मोक्ष प्राप्त करने का। दूसरा कारण द्वादशांग अवगमः, पहला कारण। दूसरा तत्तीव्र भक्ति ही, तत्तीव्र भक्ति ही। तत् यानी उस द्वादशांग के प्रति, और तत् के अंतर्गत बहुत बड़ा शब्द है, तत् सर्वनाम है, तो उसमें वो जहां से आया है द्वादशांग उनके प्रति, और उनके पास भी जहां से आया है उन सबके प्रति, यानी देव शास्त्र गुरु के प्रति जो तीव्र भक्ति है, तीव्र तीव्र शब्द पर ध्यान देना, तीव्र भक्ति है, वो बहुत जल्दी संसार से पार लगाने वाली है। और भक्ति पुण्य का कारण है, पुण्य बंध का कारण है, शुभ राग रूप है। वहीं उसी प्रकरण में आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे हैं, निश्चयेन भक्ति सम्यक्त्वं भण्यते। व्यवहार से भक्ति क्या है? गुणेषु गुणीषु गुणेश्व अनुराग भक्ति, गुणियों में जो गुणों के प्रति अनुराग होता है उसका नाम भक्ति है। लेकिन निश्चयेन भक्ति सम्यक्त्वं भण्यते, निश्चय से भक्ति किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन को। यानी सम्यक दर्शन ही भक्ति है, भक्ति कोई दूसरी वस्तु नहीं है। और उसी का खुलासा, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये उसका खुलासा है आचार्य कुनकुन स्वामी के वचनों का। आचार्य कुनकुन स्वामी ने सील पहाड़ में लिखा है, अरहंते सुह भक्ति सम्मतम। सम्यक तो क्या है? तो अरहंत भगवान के प्रति जो प्रशस्त भक्ति है उसी का नाम सम्यक है। तो भक्ति को अपन केवल राग कहकर के टाल नहीं सकते, भक्ति वास्तव में निश्चय से सम्यक दर्शन रूप है, इसलिए उसका महत्व समझना। तीसरा कारण अनिवृत्ति परिणाम, अनिवृत्ति रूप जो परिणाम होता है, जो अपने अंदर कुछ करण होते हैं, कुछ भाव होते हैं विशेष प्रकार के, अनिवृत्ति रूप जो परिणाम हो जाता है वो भी संसार से शीघ्र पार लगाता है। उसका खुलासा यह किया कि अनिवृत्ति प्रतिज्ञा जो धारण की, जिसने व्रत धारण किए उसकी, उससे कभी पीछे नहीं हटना। प्राण चले जाए लेकिन व्रत कभी भी खंडित न हो, ऐसे जो परिणाम है वो भी जीव को संसार से पार लगा देते हैं। शर्त है साथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होना चाहिए, क्योंकि वो तो मूल हेतु है मोक्ष का। मूल हेतु को अभाव नहीं दे सकते अपन, प्राप्त नहीं करा सकते। और चौथा कारण केवली समुद्घातश्चेति, केवली भगवान जो समुद्घात करते हैं वो चौथा कारण है। आप लोगों को आकुलता हो रही है कल्याण मंदिर संबंधी, लेकिन अभी ये कल्याण की बात थोड़ी सी और सुन लो इसमें, है ना? क्या हो गया ये? भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न, उसमें क्या? अच्छा ये कौन सा चल रहा था अपना? पांचवा हो गया ना, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न, ठीक है। अब छठा भेद, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, लिख लिया ना नाम? इसका दृष्टांत देखिए, यथा जैसे आत्मन दर्शन ज्ञानादयो गुणाः, आत्मा के दर्शन ज्ञानादिक जो गुण हैं वो भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न है, उसकी अपेक्षा से आत्मा के ज्ञानादिक गुण होते हैं, ये कथन है। फिर अन्वय द्रव्यार्थिक, इसके थोड़े अधिक भेद हैं। कितने भेद हैं? 10 भेद हैं, लिख लो। अन्वय द्रव्यार्थिक ने यथा गुण पर्याय स्वभावन द्रव्यम। अच्छा, जो पहले जो किया था वो क्या था? नहीं, अपन ने पहले भी एक बार गुण पर्याय किया था ना। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको अपन फिर आगे देख लेते हैं अगली बार, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ना हो जाए, है ना। बाकी पर्यायार्थिक के 6 भेद तो आप कल तैयार कर लेना, जो लिखे हैं आपने, इसको अभी फिर बाद में लिखना। द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद और पर्यायार्थिक न्याय के 6 भेद, ये एक अद्भुत विवेचन स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में उपलब्ध होता है। और पिछले वर्ष हमने उत्तम आकिंचन्य धर्म पर एक ऐसा ही आध्यात्मिक उपदेश किया था, तो एक ब्रह्मचारी जी आए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर उन्होंने उपदेश के बाद सभा को कहा था कि आज बहुत चामासे हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जिनको ये बात सुनने मिली है वो महान भाग्यशाली है। और उन्होंने निवेदन किया था कि ये कैसेट्स सब संघों में भेजी जाए। और साथ में एक बात और कही थी कि गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज जब समयसार पढ़ा रहे थे, उस समय कभी बीच में ऐसी कोई बात निकल आई थी, तब जो आध्यात्मिक वातावरण बन गया था वैसा ही रस आज प्राप्त हुआ है, ऐसा उनको उस दिन लगा था। और कुछ वैसी ही स्थिति कल यहाँ पर अपने को लगी थी। और कल जो ब्रह्मचारी जी थे, प्राकृत के प्रोफेसर, वहाँ पर अहमदाबाद में प्राकृत पढ़ाते हैं, उन्होंने जाते जाते कहा था कि मोक्ष के बाद अगर कोई दूसरा सुख है तो वो हमें आज मिला है, बोले कल के उपदेश में। तो कल ये जो चर्चा निकली थी, 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नय और 6 प्रकार के पर्यायार्थिक नय, दोनों नयों में ये बात आई थी कि आत्मा इसी समय सिद्ध भगवान के समान है। वो कैसे, तो एक झलक देख लूं। और कल हमने भी कहा था कि ये बात अलौकिक है, असाधारण है, और इसको सुनना भी महान सौभाग्य की बात है। द्रव्यार्थिक के जो भेद थे, बड़ी प्रति में 193 पृष्ठ पर, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, द्रव्यार्थिक न्याय का पहला भेद जो है, कर्म की उपाधियों को अपेक्षित न करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक। कर्म को जो स्वीकार नहीं करता वो नोकर्म को भी स्वीकार नहीं करता, उस द्रव्यार्थिक नय का नाम है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक शुद्ध आत्मा, उस द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या है, उदाहरण दिया, जैसे संसारी जीव भी सिद्ध भगवान के समान शुद्ध आत्मा है, उस द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अब इसमें यह बात नहीं चलेगी कि शुद्ध सिद्ध बन सकने की क्षमता है, सिद्ध बनने की क्षमता है, शुद्ध होने की शक्ति है, यह बात नहीं। इसी वक्त इस नय की अपेक्षा से सिद्ध समान है, ये बात है। फिर पर्यायार्थिक नय के जो 6 भेद थे उसमें भी आप देखिए, पांचवा जो भेद है, कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, ये एक भेद है उसका, पांचवा भेद, कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, यथा सिद्ध पर्याय सदृशाः शुद्धाः संसारिणाम पर्यायः, जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय के समान ही संसारी जीवों की पर्याय इसी वक्त है, इस नए की अपेक्षा से। ये चर्चा चली थी अपनी कल। तो द्रव्यार्थिक के 10 भेदों में फिर और भी जो दूसरे भेद हैं, क्या होता है कि एक नए से वस्तु का स्वरूप नहीं आता समझ में, सभी नयों को मिला करके आप फिर उसको अंदर ज्ञान में ले जाओ, तब जो ज्ञान होता है वो प्रमाण कहलाता है, श्रुति ज्ञान, और ये जो उसके भेद प्रभेद हैं, विकल्प जो हैं, वो नए कहलाते हैं। श्रुति ज्ञान के अंश को नए कहते हैं और श्रुति ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो नए का जो ज्ञान है वो अधूरा है और प्रमाण जो है वो पूर्ण है। सकलादेशो प्रमाणाधीन, विकलादेशो नयाधीन इति। संपूर्ण को विवक्षित करना प्रमाण के अधीन है और अपूर्ण को विवक्षित करना नय का विषय है, नय के अधीन है। फिर उसके और भी भेद बतलाए थे कि उत्पाद और व्यय को गौण करने वाला और सत्ता को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जैसे द्रव्य नित्य है, ये उसका विषय हो गया। फिर तीसरा, वेद कल्पना से निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जैसे अपनी गुण और पर्याय स्वभाव वाला द्रव्य है और वो द्रव्य अभिन्न है, गुण और पर्यायों से अलग नहीं है। फिर कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे क्रोध आदिक कर्म जनित भावों वाली आत्मा है, क्रोधी जीव है, ये भी द्रव्यार्थिक नय का विषय है, पर्यायार्थिक का विषय नहीं है। और उसके आगे देखिए, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, उत्पाद व्यय को सापेक्ष करने वाला जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, यथा जैसे एकस्मिन समय एक समय में द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम, द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप है, ये पांचवा भेद हो गया। फिर भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, भेद कल्पना को सापेक्ष करने वाला अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, यथा जैसे आत्मन दर्शन ज्ञानादयो गुणः, आत्मा के पास दर्शन ज्ञानादि गुण है, तो गुणी और गुण इनके भेद आ गए, भेद कल्पना सापेक्ष हो गया। फिर अन्वय द्रव्यार्थिक, अन्वय द्रव्यार्थिक ने किसको कहा, यथा गुण पर्याय स्वभाव द्रव्यम, जैसे गुण पर्याय स्वभाव वाला द्रव्य होता है। फिर स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक, स्वद्रव्यादि को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक ने, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव, इनको ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय, जैसे यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम अस्ति, वो कहता है कि स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से द्रव्य अस्ति रूप है। फिर दूसरा, नवे नंबर का द्रव्यार्थिक नय कैसा है, तो बोलते हैं परद्रव्याधिक ग्राहक द्रव्यार्थिक, परद्रव्याधिक को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक, यथा जैसे परद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति, पर द्रव्यादिक चतुष्टयों की अपेक्षा द्रव्य नास्ति रूप है, यानी पिच्छी कमंडल नहीं है, कमंडल पिच्छी नहीं है, पिच्छी पिच्छी है, कमंडल कमंडल है, दोनों नयों की बात होगी। फिर परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक, परम भाव को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक ने, यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा, जैसे ज्ञान स्वरूपी आत्मा, अत्र अनेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानस्य परम स्वभाव, ज्ञानाख्य परम स्वभाव गृहीत, क्या ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ये परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया, क्योंकि आत्मा के पास भाव बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब भावों में परम कौन सा भाव है, सबसे श्रेष्ठ भाव कौन सा है, आत्मा का सबसे श्रेष्ठ गुण कौन सा है, ज्ञान गुण। तो उसको ग्रहण करने वाला जो द्रव्यार्थिक नय है वो कहता है कि परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक उसका नाम, और फिर ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ये उसका दृष्टांत हो गया। इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हो गए। पर्यायार्थिक नय जो होता है उसकी विशेषता है, यह पर्यायार्थिको नय 270वीं गाथा है उसकी टीका, जो पर्यायार्थिक नय होता है उस साधयति साध्य सिद्धिं कारयति, साधता है, साध्य की सिद्धि कराता है, कान किनकी, तो सर्वान विशेषान पर्यायान, सब विशेष अर्थात पर्यायों की सिद्धि करता है, कराता है। उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणान, उत्पाद व्यय और द्रव्य लक्षण वाली, पर्यायों में उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों बातें बताइए। सामान्य धारणा क्या है कि पर्यायों में उत्पाद होता है या व्यय होता है, पुरानी पर्याय का व्यय है, नवीन पर्याय का उत्पाद है, लेकिन द्रव्य भी बता रहे हैं, पर्यायों में, वो कैसे? कीदृशान बहुविध सामान्य संयुक्तान, अनेक प्रकार के सामान्य से संयुक्त, सामान्य माने द्रव्य और गुण, बहुविध सामान्य ही संयुक्तान, अनेक प्रकार के सामान्यों से संयुक्त जो पर्याय हैं उनको साधने वाला नय पर्यायार्थिक नय है। अस्तित्व नित्यत्वैकत्व भिन्नत्वादि सामान्य रविना भूतान, ये अस्तित्व जो है ये सामान्य हो गया, नित्यत्व सामान्य हो गया, एकत्व सामान्य हो गया, अन्यत्व अर्थात भिन्नत्व भी सामान्य हो गया, इनसे अविनाभूत ये पर्याय होती है। कुतः साधयति, किस प्रकार साधता है? तो साधन लिंग वशात, साधन के जो लिंग अर्थात चिन्ह है उपाय है उनके माध्यम से साधता है। पर्वताग्नि वनाग्नि साधन धूम हेतु वशात, जैसे पर्वत पर पहाड़ है या फिर पर्वत पर अग्नि है या फिर जंगल में अग्नि है, इसको धुएं से सिद्ध कर सकता है। धुआं देखा तो धुआं अग्नि के कारण होता है, इससे समझ में आ गया कि अग्नि होनी चाहिए। पर्वतो यम धूमवान, यह पर्वत धुआं वाला है, तो इससे समझ में आ जाता है कि नीचे कहीं अग्नि है। पर्वतो यम अग्निमान धूमवत्वात, पर्वत अग्नि से युक्त है क्योंकि धुआं निकल रहा है। वनमिदम अग्निमत, यह जंगल अग्नि वाला है धूमवत् धूमत्वात क्योंकि धुआं निकल रहा है। सर्व वस्तु परिणामी सत्वान्यथानुपपत्ते हैं, सब वस्तु परिणमनशील है वरना उसके अस्तित्व की संगति नहीं बैठेगी, बन नहीं सकेगा, इत्यादि हेतु वशात, ऐसे हेतु ले लेकर के वो सिद्ध करता है पर्यायार्थिक ने। सब पर्यायार्थिक नय, वह पर्यायार्थिक नय पर्याय विशेष विषयो भवति, पर्याय विशेष को विषय करने वाला होता है। तथा ही अब ये जो सब प्रकरण हमें एकदम अचानक ऊपर दिख गया इसलिए हम ये आपको बतलाना चाह रहे थे। छह प्रकार के उन्होंने विकल्प बनाए पर्यायार्थिक नय के, और आपको वो चीज़ तो अभी ख्याल में नहीं आ पाई कि पर्याय में द्रव्य कैसे हैं। उत्पाद और व्यय तो सबको समझ में आता है, एकदम सीधी सी बात है, वो उदाहरण भी है जैसे नाचार्य स्वामी का कि उंगली सीधी है टेढ़ी कर दी, तो सीधी पर्याय का व्यय हो गया, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद हो गया, और फिर उंगली रूप जो द्रव्य है उसका द्रव्य है, तो द्रव्य का द्रव्य तो सीधी सरल बात है, लेकिन पर्याय में द्रव्य कैसे है? तो प्रवचन सार ग्रंथ में इसका खुलासा मिलता है, स्वाध्याय करें तो फिर सब समाधान मिल सकते हैं। अब एक ग्रंथ में अगर ये आप पूछें किसी से कि उत्पाद व्यय द्रव्य पर्यायों में घटित करके बताओ कैसे घटित करोगे, तो फिर बहुत कठिन होता है। लेकिन वहाँ पर आचार्य अमृतचंद स्वामी और आचार्य कुनकुन स्वामी ने भी इस बात का खुलासा किया है, उत्पाद अट्ठित भंगा विज्जन्ते पज्जयेषु, उत्पाद स्थिति और भंग यानी व्यय ये विज्जन्ते पज्जयेषु पर्यायों में विद्यमान होते हैं। द्रव्य में तो ठीक है द्रव्य है ही, द्रव्य तो अन्वयी है अनादि निधन है, लेकिन पर्याय में वो जो प्रवाह है उस अपेक्षा से द्रव्य है। जैसे गंगा नदी कब से है, अन्य मतों में तो कथा आती है कि भाई वहां स्वर्ग से उतरी और फिर जो कुछ भी हुआ वो लंबी चौड़ी कथा आती है उसमें, भागीरथ मुनि थे और फिर शंकर जी की जटा वगैरह सब लंबी चौड़ी कथा आती है, पर जैन मतानुसार अनादि है। अब गंगा अनादि है, ये गंगा क्या चीज है, द्रव्य है या पर्याय है? पर्याय है ना, क्योंकि वो प्रवाह चल रहा है उसका। नदी किसको कहते हैं, जो बहे उसको नदी कहते हैं ना, तो वो बहाव भी जो है पानी वो नहीं रहता, माने आप अभी जिस समय नदी के सामने खड़े हैं वो पानी जो है वो अभी एक सेकंड बाद वहां रहेगा 50 फुट आगे, लेकिन नदी वहीं रहेगी। तो पर्यायों का जो प्रवाह है वो ध्रुव है, वो नश्वर नहीं है, पर्याय नश्वर है, ये समझ में आया? जैसे कल जो बात चली थी दो उदाहरणों के माध्यम से, ऐसी कुछ मतलब गहरी बातें हैं शास्त्रों में, वो हम आपको बताते जा रहे हैं बीच बीच में। कल जो चर्चा थी कि ज्ञान पर को नहीं जानता, ज्ञान पर के निमित्त से उसके अंदर जो ज्ञेयाकार प्रतिबिंबित होते हैं उनको जानता है। दर्पण उस दीपक को अपने अंदर नहीं समेटता, दीपक का प्रतिबिंब दर्पण की स्वच्छता से उसके अंदर बन जाता है। वो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण की पर्याय है, दीपक की पर्याय तो दीपक में है। इसी प्रकार वो एक मॉडर्न उदाहरण दिया था आज का, आधुनिक उदाहरण है, याद है कौन सा? कैमरा का। कैमरा में क्या होता है, किसका फोटो आता है? सामने खड़ा है उसके प्रतिबिंब का फोटो आता है, उसका नहीं आता, क्योंकि वो जो कॉन्वेक्स लेंस है उस कॉन्वेक्स लेंस से उसकी किरणें अंदर जाती है और फिर उसमें फोटोग्राफिक जो रील रहती है प्लेट उसमें प्रतिबिंब पड़ता है और वो उसमें अंकित हो जाता है और उसका पॉजिटिव निकालो तो फोटो आ जाता है। व्यवहार से उपचार से कहा जाता है मेरा फोटो है या उसका फोटो है, फोटो वास्तव में उसके प्रतिबिंब का है, ठीक है ना। उसी प्रकार अपन जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपन जान रहे हैं जिसको, बोले कि मैं तेरे को देख रहा हूं, तेरे को देख रहा हूं, ये एक व्यावहारिक भाषा है। वास्तव में तेरा जो प्रतिबिंब मेरे अंदर पड़ रहा है उसको देख रहा हूं, आ गया ना समझो। निश्चय से ज्ञान पर को नहीं जानता, व्यवहार से तो ऐसा ठीक है। जान दिपस्यति सर्वं व्यवहारणेन केवली भगवं केवलणानि जानति नियम पस्यति नियमेण अपानम। नियम सार के शुद्धोपयोग अधिकार की पहली गाथा कि केवली भगवान व्यवहार से सर्वं जाने, सबको जानते हैं, लेकिन निश्चय से सिर्फ अपने आप को जानते हैं। सिद्ध भगवान की पर्याय उसमें भी परिवर्तन तो है ना, षड्गुणी हानि वृद्धि रूप। हाँ, उस अपेक्षा से अगर स्थूल पर्याय की ले लो तो फिर वो शाश्वत पर्याय है, मतलब वो सादी निधन सादी अनिधन पर्याय है सिद्ध भगवान की। एक अनादि निधन होती है कि जिसकी कोई शुरुआत भी नहीं है और जिसका कोई अंत भी नहीं, उसको अनादि निधन बोलते हैं, और एक सादी शांत होती है आदि सहित और अंत सहित, ठीक है ना। जैसे अपनी पर्याय है, इसकी एक शुरुआत है जन्मदिन या फिर गर्भ दिवस और फिर एक मरण है, अंतिम दिन है, तो ये सादी शांत पर्याय कहलाती है। और एक होती है सादी निधन सादी अनिधन। तो सिद्ध भगवान जो है वो जिस दिन सिद्ध हुए हैं वो उनकी आदि हो गई उस पर्याय की, सिद्ध पर्याय की। लेकिन सिद्ध पर्याय कभी नष्ट नहीं होगी, इसलिए वो अनिधन है। तो सादी अनिधन ऐसी पर्याय। अब देखिए पर्याय थे नए के, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अब ये तो भारी विषय आ गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप श्रद्धा के साथ रुचि के साथ सुन लेना इसको। बहुत ये ऐसा वर्णन आपको शायद कहीं मिले पर्यायार्थिक न्याय के, ये जो छह भेद हैं ये मुश्किल है मिल पाना सब जगह। एक अनादि नित्य पर्यायार्थिक, अनादि नित्य में और भी आप उदाहरण दीजिए, बताइए आप दीजिए उदाहरण और कौन से है? अकृत्रिम चैतन्य, कितना सुंदर उदाहरण दिया। अकृत्रिम चैतन्य अनादि से है, किसी ने बनाया नहीं और फिर अनंत काल तक रहेंगे भी, कभी नष्ट नहीं होने वाले, जैसे नंदीश्वर द्वीप में 52 जैन मंदिर। ऐसे और उदाहरण भी होते हैं, विजयार्थ पर्वत है और हिमवान महाहिमवान आदि, ये षटकुलाचल जो है ये सारे अनादि निधन है। तो ये जो पर्यायार्थिक न्याय का ये वाला भेद है अनादि नित्य पर्यायार्थिक, वो इनको ग्रहण करता है। अभी आप याद करके जाना, अभी घर जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको दोबारा, अभी ये सब याद हो जाते हैं, सरल है। सादि नित्य पर्यायार्थिक यथा सिद्ध जीव पर्यायो ही सादि नित्य है। सादि नित्य पर्यायार्थिक नए किसको ग्रहण करता है कि कोई ऐसी पर्याय जिसकी आदि तो है लेकिन अंत नहीं है, जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय शुरू तो हुई है कहीं ना कहीं से लेकिन समाप्त कहीं भी नहीं होगी, सादी नित्य पर्याय अर्थिक नहीं होगा। इसकी अब भी अपन ने चर्चा की थी। फिर सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभाव स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय अर्थ का, ये नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, जैसे कुछ साउथ के लोगों के नाम बहुत लंबे चौड़े होते ना ये नाम भी बहुत लंबा चौड़ा नाम है। उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय अर्थिक है। उत्पाद और व्यय को ग्रहण करने वाला जो स्वभाव की अपेक्षा नित्य शुद्ध पर्याय अर्थिक नए है, उसका उदाहरण क्या है? यथा जैसे समयम समयम प्रति पर्याय विनाशिनः, समय समय प्रति माने एक एक समय में जो पर्याय होती है वो नश्वर होती है। सत्ता गौणत्वेन, सत्ता को वो गौण कर रहा है लेकिन एक एक समय की जो पर्याय है वो नष्ट होती है, इसको पकड़ रहा है। तो उत्पाद व्यय को ग्रहण करते हुए स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक, इसका पूरा नाम है। फिर सत्ता सापेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक, एक दूसरा शुद्ध पर्याय आर्थिक कौन सा है? सत्ता सापेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक। वो दूसरा पहला वाला कौन सा था? उत्पाद व्यय ग्राहक नित्य स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक। उदाहरण उसमें ऊपर वाले में नहीं दिया, प्रत्येक पर्याय क्षण क्षण में नष्ट होती, बस यही दिया यथा। और इसका जो उदाहरण दे रहे हैं, यथा एकस्मिन समय त्रयात्मक पर्याय, जैसे एक ही समय में पर्याय तीन रूप है, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप। एक समय के लिए तो ध्रुव है ना, पर्याय एक समय के लिए तो स्थाई है, तो वो त्रयात्मक है। फिर पांचवा भेद जो है पर्याय आर्थिक का, आप लिखना चाहो तो लिख लो, नाम बताते जा रहे हैं हम। पहले सबसे पहला नाम है अनादि नित्य पर्याय आर्थिक, अनादि नित्य पर्याय आर्थिक नए। फिर दूसरा नाम है सादि नित्य पर्याय आर्थिक नए, अनादि नित्य में मेरु गंगा आदि उदाहरण है, अकृत्रिम चैत्यालय। और सादि नित्य में सिद्ध भगवान की पर्याय है, और कोई हो सकती है सादि नित्य? एक मिनट, इसमें एक वचन दिया है या सिद्ध जीव पर्यायो ही सादि नित्य, वो एक ही ऐसी पर्याय है जो सादि नित्य ही लगाया। इसके बाद सत्ता गौणत्वेन, सत्ता को गौण करने के कारण उत्पाद व्यय ग्राहक, तीसरा नाम थोड़ा लंबा है, शायद सबसे लंबा हो। उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक, उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक ने। उत्पाद व्यय ग्राहक पहले याद कर लो, फिर स्वभाव नित्य शुद्ध, या स्वभाव नित्य कर लो फिर दूसरे हिस्से में। उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय अर्थिक। शुद्ध शब्द तो आपके मतलब जबान पर जमा हुआ है, इसलिए शुद्ध शब्द तो आसानी से याद होता है। यथा समयम समयम प्रति पर्याय विनाशिनः, जैसे समय समय जो पर्याय होती हैं वो विनाशी है, नश्वर है। फिर दूसरा सत्ता सापेक्ष, तीसरा वाला समयम समयम प्रति पर्याय, एक एक समय में होने वाली जो पर्याय है वो उत्पन्न हुई है और पूर्व पर्याय नष्ट हुई है। उत्पाद और व्यय को ग्रहण करके इसका उत्पाद हुआ है, पिछली का व्यय हुआ है। और स्वभाव नित्य, अब ये विशेषण ऐसा लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी स्वभाव नित्य पर्याय आर्थिक था ना, स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक दो प्रकार के हो गए, एक उत्पाद व्यय ग्राहक और दूसरा सत्ता सापेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक। उसमें कहती है कि एक समय में जो पर्याय होती है वो नश्वर है, ये उसका दृष्टांत दिया, क्योंकि उत्पाद और व्यय इसको वो ग्रहण करने वाला नए है। और यहाँ पर सत्ता सापेक्ष जो है, यथा एकस्मिन समय त्रयात्म का पर्याय, इसमें तीन रूप वो पर्याय होती है। सत्ता सापेक्ष करके माने उत्पाद व्यय को वो निषेध नहीं कर रहा है, लेकिन सत्ता सापेक्ष कर रहा है, उधर सत्ता को गौण कर दिया था इसलिए नश्वर कह रहा था, और यहाँ सत्ता सापेक्ष करने के कारण उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों को ग्रहण कर लिया, ये उसका खुलासा हुआ। फिर और इसका स्पष्टीकरण चाहिए, इतना काफी है। कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, ये बहुत अद्भुत है, ये पांचवी है और सबसे अद्भुत है। ये कर्मोपाधि से रहित निरपेक्ष, कर्मोपाधि की अपेक्षा नहीं कर रहा है, कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, ये तीसरा भेद है उसका, स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक का। कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, यथा सिद्ध पर्याय सदृशा शुद्धा संसारिणाम पर्यायः, ये बड़ी विचित्र चीज है। संसारी जीवों की भी जो पर्याय हैं अभी, वो इस नए की अपेक्षा से तो बिल्कुल सिद्ध भगवान जैसी है। अब बताओ देखो, एक वो शुद्ध निश्चय नए जो है, जिसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नए कहते हैं, उसकी अपेक्षा तो सब्वे, देखो सब्वे शुद्धा हो सिद्ध नया द्रव्य संग्रह में आती है गाथा,